ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा को कहा जाता है सत्य, गॉड इज ट्रुथ। तो सत्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सत्य ज्ञान देते हैं, वो सतयुग की स्थापना करते हैं। सही सही श्रीमत देते हैं। हम बच्चों को भी बाबा सत्य बनाते हैं। तो सत्य कैसे हम बनते हैं बाबा के? जब हम आत्मा फिर से अपनी ओरिजिनल सत्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, पवित्र स्वरूप में आ जाते हैं, तो हमें भी उस रूप से सत्य बनाते हैं। तो हम बच्चों को भी तो बाबा से सत्य रहना है, क्योंकि बाबा से अगर हम सत्य हैं तो फिर जो बाबा हमें देते हैं वो हमें उस प्राप्ति का सच्चा अनुभव भी होगा। बाबा हमें इतना ऊंचा सत्य ज्ञान देते हैं, इतनी ऊंची हमारी स्थिति बनाते हैं, इतना ऊंचा भाग्य देते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन वो खुशी कई बार नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि बाबा के साथ सच्चे नहीं है। अगर हम भी बाबा के साथ सच्चे होंगे तो वो खुशी स्थायी रहेगी। तो बाबा के साथ सच्चे कैसे रहें? एक तो जो बाबा कहते हैं उस पर चलना है, हर श्रीमत का पालन करना है। और दूसरा, बाबा कहते हैं जो भी जीवन में किया है, जो कुछ भी आपका हुआ है, वो सब सच सच बाबा को बता दो। सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो बाबा को सच सच बता दो, चलो माफी भी ले लो, अब तो हो गया। लेकिन फिर बाबा से संकल्प भी करो कि दोबारा फिर कभी नहीं करेंगे। तब तो कहेंगे ना कि हम बाबा के सच्चे बच्चे हैं। तो उस कर्म भी हमारे सच्चे हो, ये कर्म क्षेत्र है। लेकिन केवल कह देना बाबा मुझे माफ कर दो, बाबा कहते कर्म का फल तो मिलेगा ही। ये तो है नहीं कि कर्म का फल नहीं मिलेगा, लेकिन बाबा को बताने से क्या होगा? दिल साफ हो जाएगा, हल्के हो जाएंगे। तो अपने लिए ही प्राप्ति है, बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए शिव बाबा के आगे सच्चे बनो। तो आज बाबा की मुरली उस पर भी है। और दूसरा, बाबा कहे ब्रह्मा बाबा कौन है? कितने दिनों से बाबा की मुरली में आ रहा है, ब्रह्मा बाबा का भी कितना कदर करना चाहिए। क्यों कदर करना चाहिए? क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का सबसे मुरब्बी बच्चा है। ब्रह्मा द्वारा ही हमें ये ज्ञान देते हैं। और ब्रह्मा को क्या कहते हैं? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, जिसमें बाबा ने आज बताया है इतना ग्रेट, जो हम धर्म पिताए हैं उनको तो ग्रेट कहते हैं, उनका भी पिता है। तो जो धर्म पिताओं का भी पिता है वो कितना ग्रेट होगा, कितना महान होगा। तो ऐसे महान हमारे प्रजापिता ब्रह्मा और इतने ऊंचते ऊंच हमारे परम पिता, उसका बाबा हमें कितना नशा चढ़ाते हैं। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य आज 9/1/2026 है। मीठे बच्चे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता। कई को से पूछो ना आपके पिता का नाम क्या है तो बताएंगे, फिर उसके पिता का नाम आपके ग्रैंडफादर, हाँ आपके जो जो दादा है उसका नाम बताओ, चलो वो भी जानते होंगे, पर उस आपके दादा का भी पिता का नाम बताओ, शायद वो भी जानते होंगे, बाकी तो कई तो जानेंगे भी नहीं, याद भी नहीं, कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं दादा परदादा परदादा के भी परदादा 84 जन्म पीछे चले जाओ, और वो पिता तो वो है प्रजापिता ब्रह्मा, तो वो आदि पिता को भी हम जानते हैं, तो सारे सृष्टि चक्र को भी हम जानते हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो आदि पिता जिसको प्रजा पिता ब्रह्मा कहा जाता है, उसकी बायोग्राफी को भी तुम जानते हो, तो कितने महान हो गए हम। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अर्थात सर्वधर्म पिताओं का भी आदि पिता है प्रजा पिता ब्रह्मा, जिसके ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो, क्योंकि अभी हम उनके डायरेक्ट बच्चे बने हैं। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में भी, आदि पिता के बारे में भी हम उनके ऑक्यूपेशन को जानते हैं। प्रश्न है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की युक्ति क्या है? बहुत सरल उत्तर बाबा ने दिया है, कोई बहुत बड़ा परिश्रम नहीं करना है अगर कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो। उत्तर है, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। अगर कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है तो पहली बात, इस जन्म का कोई भी कर्म बाप से छिपाओ नहीं। दूसरा, हर कर्म श्रीमत अनुसार अभी करो, जो बीत गया वो तो बीत गया लेकिन बाबा को बता दो, और दूसरा अभी श्रीमत के अनुसार कर्म करो तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। सारा मदार कर्मों के ऊपर है, इसलिए संसार को क्या कहते हैं, कर्म क्षेत्र, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल, तो इसीलिए बाबा कहते हैं सारा मदार कर्मों के ऊपर है। अगर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं फिर वो और बड़ी बात, अगर कोई पाप कर्म बाबा का बनकर फिर कोई पाप कर्म करके छिपा लेते हैं तो उसका 100 गुना दंड पड़ता है, फिर पाप वृद्धि को पाता रहेगा। एक तो छिपाया, हाँ वो भी पाप किया, फिर वो पाप छिपाया किसी को पता ही नहीं, तो उसमें प्रोत्साहन मिलेगा कि चलो और भी करो, किसको पता तो चलता नहीं है। तो बाबा कहते हैं फिर पाप वृद्धि को पाते रहते हैं, और फिर और क्या नुकसान होगा, बाप से योग टूट जाएगा, क्योंकि पाप वृद्धि को पाते रहेंगे 100 गुना उसकी सजा भी मिल रही है, तो फिर बाबा कहते हैं बाप से योग भी टूट जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ऐसे छिपाने वालों का सत्यानाश हो जाएगा। अब बताओ, हाँ कितनी बड़ी बात हो जाएगी, ऐसे छिपाने वालों का सत्यानाश हो जाता, इसीलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे ये तो समझते हैं कि इस पुरानी दुनिया में अब थोड़े दिन के हम मुसाफिर हैं। सचमुच आता है बुद्धि में, हम थोड़े दिन के मुसाफिर हैं। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं 40,000 वर्ष यहाँ और रहने का है। तुम बच्चों को तो निश्चय है ना, ये बातें भूले नहीं कि हमको यह निश्चय है कि अभी हम थोड़े दिन के मेहमान हैं यहाँ। तो बाबा कहते ये बातें भूलो नहीं, यहाँ बैठे हो मधुबन में तो तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये तो विनाश होने का है, आत्मा तो अविनाशी है। ये भी बुद्धि में है कि हम आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब बाप आया है ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब ही बाप आते हैं नई दुनिया बनाने। नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया, इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। अनेक बार हमने ये चक्र लगाया है, अभी ये चक्र पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हम थोड़े से देवताएं रहेंगे। हाँ, इतने ढेर सारे मनुष्य नहीं होंगे, थोड़े से देवताएं रहेंगे। देवताएं रहेंगे, बाबा कहते मनुष्य नहीं होंगे, उनको वहां मनुष्य नहीं कहेंगे, देवता ही कहेंगे। तो थोड़े देवताएं रहेंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, ये तो पक्का निश्चय है ना। बाकी है, अब ये तो निश्चय है हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, तो बाकी क्या है? बाकी बाबा कहते हैं कर्मों पर सारा मदार है। बन तो जाएंगे देवता, सत्युग में आएंगे जरूर, लेकिन ऊंच पद पाना है तो फिर कर्मों पर मदार है। बाकी कर्मों पर ही सारा मदार है। मनुष्य उल्टा कर्म करते हैं तो वो अंदर खाता जरूर है, लगेगा ना कि भी मैंने ये गलत किया, मन खाता है, अंदर खाता जरूर है। इसीलिए बाप पूछते हैं कि इस जन्म में ऐसे कोई पाप तो नहीं किए हैं? ये है ही छी छी रावण राज्य, ये भी तुम ही समझते हो। ये छी छी रावण राज्य बाबा के, तो यही, ये भी तुम ही समझते हो। अब बेहद का बाप समझाते हैं कि राम राज्य किस प्रकार का होता है। अब बाबा ने राम राज्य का पूरा वृतांत बताया ना, किस प्रकार का राम राज्य होता है। ये तो धुंधकारी दुनियाएं, अभी थोड़ी राम राज्य है, ये तो धुंधकारी दुनियाएं। अभी बेहद का बाप बच्चों को वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम भक्ति नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हम भक्ति? लोग तो भक्ति बहुत करते, डर लगता है ना। हाँ, भक्ति करेंगे नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, इसलिए पूजा भी करो, ये भी करो, ये भी करो, डर लगता है। तो बाबा कहते अभी तुम ये डरते भी नहीं हो उस रूप से कि भाई ये करेंगे ये हो जाएगा, वो तो होगा कर्म अनुसार। लेकिन बाबा कहते हैं तुम भक्ति क्यों नहीं करते हो? क्योंकि अभी तुमको बाप का हाथ मिला है, भगवान खुद आया है हमें ले जाने के लिए, तो तुमको बाप का हाथ मिला है। बाप के सहारे बिगर तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते थे। बाबा का हाथ नहीं था तो इस विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे थे, इसलिए फिर डर भी रहता था, इसलिए फिर भक्ति भी करते थे डर के मारे भी। आधा कल्प है ही भक्ति, ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सतयुग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, फिर पवित्र राज्य में आएंगे। ये ज्ञान भी अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही तुमको मिलता है। ये है ही, कहाँ है हम, कहाँ बैठे हैं, ये है ही पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम छीछी से गुलगुल, कांटों से फूल बन रहे हो। कौन बनाते हैं? नशा है ना, कौन बनाते हैं हमें कांटों से फूल, छीछी से गुलगुल? स्वयं बाप, स्वयं भगवान हमको ये बना रहे हैं। तो कौन बनाते हैं? बाप। तो बाप को तुमने जाना है, हम आत्माओं का वो बेहद का बाप है। लौकिक बाप को तो बेहद का बाप नहीं कहेंगे ना, वो तो हद का बाप है, केवल इस जन्म का, इस शरीर का बाप है। लौकिक बाप को तो बेहद का बाप नहीं कहेंगे, पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सबका बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए। तुम बच्चे सब का ऑक्यूपेशन जान चुके हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो, कितना सजा हुआ है, देखो तो से विष्णु का चित्र कितना सजा हुआ, उसकी भेंट में ब्रह्मा देखो कितना साधारण। तो बाबा कहते हैं विष्णु का चित्र देखो कितना सजा हुआ है, स्वर्ग का मालिक है ना, वो स्वर्ग का मालिक है, इसीलिए उसका इतना चित्र सजा हुआ दिखाते हैं, वो स्वर्ग का मालिक है ना। अब ये तो संगम का ही कहेंगे, ब्रह्मा सजा हुआ नहीं है क्योंकि वो तो संगम का है, और विष्णु सतयुग का है इसलिए वो सतयुग का है तो सजा हुआ है, ब्रह्मा संगम का है तो साधारण है। तो बाबा कहते हैं ये तो संगम का ही कहेंगे ना ब्रह्मा बाबा को। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वो भी संगम में आते हैं ना, क्योंकि तीनों का ज्ञान भी अभी है, सारे कल्प में तीनों मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये स्थूल वतन का ज्ञान भी नहीं होगा। सूक्ष्म वतन तो होता ही नहीं है, वो सूक्ष्म वतन भी अभी संगम पर ही होता है। तो बाबा कहते हैं वो भी संगम में आते हैं ना, बाप समझाते हैं पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है, तो पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया है नई दुनिया और पतित दुनिया है पुरानी दुनिया। ये भी जानते हो कि बेहद का बाप का भी पार्ट है, जैसे हमारा पार्ट है वैसे बेहद के बाप का भी पार्ट है। हाँ, क्या पार्ट है बेहद के बाप का? वही क्रिएटर डायरेक्टर है ना। हाँ, डायरेक्टर का मतलब ये नहीं कि एक एक कर्म के लिए डायरेक्शन देते हैं, वही कराता है, नहीं, हर एक आत्मा मालिक है, लेकिन डायरेक्टर किस हिसाब से? घर ले जाने में, घर ले जाते हैं, डायरेक्शन देते हैं कैसे घर जा सकते हो, तो क्रिएटर और डायरेक्टर है। सब मानते हैं तो जरूर उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना, भगवान को मानते हैं, हाँ क्रिएटर है डायरेक्टर है तो जरूर कोई कुछ तो किया है ना उसने, तब तो ये उनकी महिमा है, तो उनकी कोई तो एक्टिविटी होगी ना। उनको आदमी नहीं कहा जाता है, परमात्मा को आदमी नहीं कहेंगे, क्यों? उनको शरीर ही नहीं है, आदमी माना जिसको शरीर हो, उनको तो शरीर नहीं है। बाकी तो सबको या तो मनुष्य या तो देवता कहेंगे, क्योंकि मनुष्यों को भी शरीर है देवताओं को भी शरीर है, पर शिव बाबा को ना मनुष्य कहेंगे ना देवता, क्योंकि उनको शरीर नहीं है। तो बाकी तो सबको या तो मनुष्य या फिर देवता कहेंगे, शिव बाबा को तो न देवता न मनुष्य कह सकते हैं क्योंकि उनको शरीर ही नहीं है। अब ये तो टेम्पररी लिया है, अगर शरीर लिया भी शिव बाबा ने तो भी तो टेम्पररी लिया है। खुद कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को मैं भी मीठे मीठे बच्चों को मैं शरीर बिगड़ राजयोग कैसे सिखलाऊं, इसलिए मुझे शरीर चाहिए, तो राजयोग सिखलाना है और बच्चे तो शरीर में है, तो मुझे सिखलाने के लिए जरूर शरीर चाहिए, टेम्पररी तो चाहिए, तो मैं कैसे सिखाऊं राजयोग शरीर बिना? मुझे मनुष्यों ने तो ठिककर भीतर में कह दिया है, परंतु अभी तो तुम बच्चे समझते हो मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, कोई मनुष्य तो सिखला न सके, देवताओं ने सतयुगी राजाई कैसे ली? अगर ये किसी से पूछो तो किसको आएगा थोड़े, कैसे ली देवताओं ने सतयुगी राजाई? जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखे होंगे, क्योंकि राजयोग से ही राजाई मिलती है। तो ये सिमरण कर अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। हमने अब 84 का चक्र पूरा किया है, बाप कल्प कल्प आते हैं, तो बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अब श्री कृष्ण जो प्रिंस था सतयुग का, वही फिर 84 का चक्र लगाता है। तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, शिव बाबा 84 जन्म है ये तो नहीं कहेंगे, पर श्री कृष्ण की आत्मा के तो 84 जन्म है ना, तो तुम शिव के तो 84 जन्म बताएंगे नहीं, तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ये सब बातें जानते हैं। ज्ञान को नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार ये सब बातें जानते हैं। माया बहुत कड़ी है, क्यों बाबा को नंबर वार कहना पड़ता है, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है, माया बहुत कड़ी है, किसको भी छोड़ती नहीं है। ये बाप अच्छी रीति जानते हैं, तो ऐसे मत समझो बाबा ये जानते हैं माया किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं ये मत समझो कि बाप कोई अंतर्यामी है, हर एक के दिल को पढ़ रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। ये बाबा को ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि वो अंतर्यामी है। तो बाबा कहते हैं नहीं, कैसे बाबा जान लेते हैं, कोई थॉट रीडर नहीं है कि मन को पढ़ते नहीं है बाबा, लेकिन कैसे जान लेते हैं, सबकी एक्टिविटी से जान लेते हैं, वो क्या क्या करते हैं तो वो तो बाबा देखते हैं ना, तो एक्टिविटी से जान लेते हैं। एक्टिविटी से हाँ, कैसा व्यवहार करते हैं, क्या कर्म करते हैं, वो एक्टिविटी से जान लेते हैं। बहुत छीछी चलन भी चलते हैं, बाबा को ये पता है, देखते हैं बाबा कि कई बच्चे बहुत छीछी चलन भी चलते हैं। बाप बच्चों को खबरदार करते हैं, माया से संभालना है। माया ऐसी है जो किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है, कच्चा खा लेती है। कच्चा कैसे खा लेती है, देखा है ना कच्चा कैसे खाती है, जानवर कैसे, शेर कैसे खाता है, हमने तो देखा। हम गए थे वहाँ का अफ्रीका में गए थे, वहाँ पर बहुत है जहाँ पर ये शेर बहुत है, तो देखा एक शेर कैसे वो कच्चा कच्चा मांस खा रहा था, एकदम पता चलता है ना कच्चा। तो देखो बाबा कहते वो माया भी अजगर कैसे अंदर ही अंदर कच्चा ही निकल जाती है, पूरा मनुष्य, पूरा मनुष्य को वो जैसे खा जाता है, अंदर ही हप कर लेता है। तो बाबा कहते हैं माया ऐसी है किसी न किसी रूप में एकदम हप कर लेती है, फिर भल बाप समझाते हैं तो भी बुद्धि में नहीं बैठता, उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है, जो बाबा कितना भी समझाए उसकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। इसीलिए बच्चों को बहुत खबरदार रहना है। काम महाशत्रु है, अगर काम महाशत्रु के वश हो गए तो वो तो पूरा ही खा जाएगी माया। तो काम महाशत्रु है, मालूम भी नहीं पड़े कि हम विकार में गए हैं। कई विकार में भी जाते लेकिन मालूम ही नहीं पड़ता कि विकार में भी हम गए हैं, ऐसे भी होता है। इसीलिए बाप कहते हैं कुछ भी भूल आदि होती है तो साफ बताओ, छिपाओ नहीं, नहीं तो 100 गुना पाप हो जाएगा जो अंदर में खाता रहेगा, एकदम गिर पड़ेंगे। सच्चे बाप के साथ बिल्कुल सच्चा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। बाबा सावधान कर रहे हैं, नहीं तो बहुत बहुत घाटा है। माया इस समय तो बहुत कड़ी है, बहुत कड़ी है माया। ये रावण की दुनिया है, हम इस पुरानी दुनिया को याद ही क्यों करें, रावण की दुनिया है। हम तो नई दुनिया को याद करें जहां अब जा रहे हैं। हाँ बाबा मिसाल देते हैं, क्यों नई दुनिया को याद करना है जहां हम जा रहे हैं और पुरानी दुनिया को याद नहीं करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप जब नया मकान बनाते हैं, लौकिक में भी देखते हैं, बाप जब नया मकान बनाते हैं तो बच्चे समझते हैं ना हमारे लिए मकान बना रहा है बाप, खुशी रहती है। हाँ फिर हम इस मकान में ये करेंगे वो करेंगे, क्या नहीं सोचते नए मकान के लिए, खुशी रहती है। अब ये है बेहद की बात, हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है, आता ही ख्याल, तो हम उस नई दुनिया में क्या करेंगे। हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग बन रही है, स्वर्ग में जरूर मकान भी तो होंगे ना रहने के लिए। अब हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना गुल गुल फूल बनेंगे। हम विकारों के वश तो कांटे बन गए थे। बाप जानते हैं, बाबा क्या जानते हैं कि माया आधा तो को तो एकदम खा जाती है। कल भी बाबा ने कहा माया आधा को तो खा जाएगी। ये तो उस समय की बात है, अभी क्योंकि उस समय इतना कोई बाबा के समय को इतना विनाश कोई दिखाई नहीं देता था। अभी तो पल पल पर जो भी न्यूज सुनते हैं उसने विनाश की बातें, सब कुछ विनाश के लिए ही सब कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो अभी तो हाँ ऐसे नहीं है, समझते हैं, इसीलिए बाबा को ऐसे नहीं छोड़ के जाते, समझते हैं दुनिया में भी कुछ रखा नहीं है। तो बहुत अच्छी अच्छी कहकर जाते हैं। हाँ बाप के पास बाबा कहते हैं माया आधा को तो एकदम खा जाती है। तुम भी समझते हो जो नहीं आते हैं वो तो माया के वश तो हो गए ना, बाप के पास तो आते नहीं। ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। कल भी मेरे पास एक भाई आया, कहता है बाबा कहते हैं आधों को खा जाएगी तो क्या होगा। हाँ आधों को खा जाएगी। हमने कहा तुम चिंता मत करो, हाँ तुमको ना खाए ये संभालो, आधा को खा जाएगी। तो बाबा कहते ऐसे माया बहुतों को हप कर लेती है। बहुत अच्छी अच्छी कहकर जाते हैं, हाँ बहुत अच्छा हम आएंगे आएंगे ये कहकर जाते हैं। हम ऐसे करेंगे ये करेंगे, हम तो यज्ञ के लिए प्राण देने लिए भी तैयार है, ऐसे भी कह के जाते हैं। आज वो है नहीं, गए हाँ माया खा गई, आज वो है नहीं। तो तुम्हारी लड़ाई है ही माया के साथ। दुनिया में ये कोई नहीं जानते हैं कि माया के साथ भी लड़ाई कैसे होती है। बाकी तो मल्ल युद्ध तो देखते रहते, वो स्थूल में युद्ध भी देखते हैं, न्यूज में तो सब वहां टीवी पर तो देखते हैं कैसे होता है सब, लेकिन माया से लड़ाई कैसे होती है वो दिखाएं कैसे। माया के साथ लड़ाई कैसे होती है, अभी तुम बच्चों को बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है जिससे तुम अंधियारे से सोजरे में आ गए हो। आत्मा को ही ये ज्ञान नेत्र देते हैं, ये कोई शरीर के ऊपर नेत्र नहीं आ जाता है, ये आत्मा को ज्ञान नेत्र मिलता है। तब बाप कहते हैं हाँ ज्ञान नेत्र मिलना माना अपने को आत्मा समझो, ये ज्ञान नेत्र मिला है अपने को आत्मा देखो आत्मा समझो। बेहद के बाप को याद करो, भक्ति में तो तुम याद करते थे परमात्मा को, याद करते थे भक्ति में, कहते भी थे क्या कहते थे, आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे, मीरा के तो बहुत भजन है ना इसके, तो आप आएंगे तो हम बलिहार जाएंगे। अब कैसे बलिहार जाएंगे ये थोड़ी जानते थे, अब बलिहार जाएंगे का मतलब क्या, ऐसे थे गला काट के देंगे शिव के ऊपर, ये कोई बलिहार जाने की बात नहीं है, पर कैसे जाएंगे ये तो पता ही नहीं था, ये थोड़ी जानते थे। तो अभी तुम समझते हो किसको कहा जाता है बलिहार जाना, समझते ना, हाँ बाबा ये तन मन धन सब तेरा, मैं बाबा ट्रस्टी हूँ, इसको कहते हैं बलिहार जाना। तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो हम जैसे आत्मा है वैसे वो बाबा भी है, हाँ वो भी आत्मा है। बाप का है अलौकिक जन्म, शिव बाबा अलौकिक, मेरा है ना गीता में मेरा जन्म अलौकिक है, मैं तुम्हारे सदृश जन्म नहीं लेता हूँ। तो बाप का है अलौकिक जन्म। तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, शिव बाबा का अलौकिक जन्म कैसे प्रवेश करते हैं, पर काया प्रवेश, अपनी काया नहीं है। तो तुम बच्चों को कैसे अच्छी रीति पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं वो बाप कि ये वही बाप है जो कल्प कल्प हमारा बाप बनते हैं। बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं, मैं वही बाप हूँ जो कल्प कल्प तुम्हारा बाप बनता हूँ। हम भी क्या कहते हैं, बाबा भी कहते हैं मैं कल्प कल्प तुम्हारा बाप हूँ, और हम भी बाबा बाबा कहते हैं, फिर बाबा भी बच्चे बच्चे कहते हैं, हम बाबा बाबा कहते हैं और बच्चे और बाबा फिर बच्चे बच्चे कहते हैं। वही टीचर के रूप में राजयोग सिखलाते हैं, और तो कोई राजयोग सिखला न सके। विश्व का तुमको मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप का बनकर विश्व का मालिक हमको बाबा बना रहे हैं, तो ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी तो लेनी चाहिए, क्योंकि वो टीचर भी अभी बनते हैं, बाप तो है ही लेकिन टीचर भी बनते हैं, तो ऐसे टीचर का की शिक्षा भी लेनी चाहिए। तो बाबा कहते ऐसे बाप का बनकर फिर उसी टीचर की शिक्षा भी लेनी चाहिए, फिर तो खुशी में गदगद होना चाहिए, शिक्षा लेकर के खुशी में गदगद होना चाहिए। परंतु फिर बाबा को परंतु क्यों कहना पड़ता, खुशी में गदगद होना चाहिए, परंतु अगर छीछी बना बाबा का बनकर, फिर छीछी बना तो फिर वो खुशी आएगी नहीं, भल कितना भी माथा मारे, फिर जैसे वो हमारा जाति भाई नहीं है, हमारा जाति भाई माना नहीं है माना, वो फिर सच्चा ब्राह्मण कैसे होगा अगर वो कोई गलत कर्म किया तो। तो बाबा कहते वो हमारा जाति भाई नहीं है। यहाँ तो मनुष्यों के कितने सरनेम होते हैं, जाति में तो फिर कितने एक ही जाति है लेकिन कई सरनेम होते हैं, तुम्हारा सरनेम देखो एक ही है, हम सबका सरनेम क्या है, एक ही है, कौन सा, बीके, हाँ बस बीके। तो तुम्हारा सरनेम देखो कितना बड़ा है, हाँ ब्रह्मा कुमार कुमारी, ये है बड़े ते बड़ा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, उनको तो कोई भी जानते नहीं है, शिव बाबा को तो सर्वव्यापी कह दिया है, ब्रह्मा का भी किसको पता नहीं पड़ता है। चित्र में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर का शंकर दिखाते हैं, पर कहाँ दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को, कहाँ दिखाते हैं, चित्रों में, सूक्ष्म वतन में। हमेशा देखेंगे ना जब भी कोई चित्र दिखाएंगे तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो वो बादलों के बीच में दिखाते हैं, वो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के चित्र दिखाते हैं, अब ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में ले गए, अब प्रजापिता ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन में नहीं है ना, प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होता है, वहां तो फरिश्ता ब्रह्मा है, तो प्रजापिता ब्रह्मा को फिर भी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया, प्रजा तो इस सृष्टि पर है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं वहां बच्चे थोड़ी एडॉप्ट करेंगे ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया बच्चों को, वो तो सृष्टि पर ही बच्चे है ना, तो कोई सूक्ष्म वतन में थोड़ी एडॉप्ट करेंगे। तो बाबा कहते वहां थोड़े बच्चे एडॉप्ट करेंगे, किसको भी पता नहीं है, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं परंतु बायोग्राफी नहीं जानते। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा ने समझाया है ब्रह्मा के लिए कि ये हमारा रथ है, बहुत जन्मों के अंत में हमने ये आधार लिया है, ये पुरुषोत्तम संगम युग क्या है, बाबा इसको और क्या नाम देते हैं, गीता का एपिसोड, गीता का एपिसोड, गीता का युग है, ये संगम युग है, गीता का युग। पवित्रता भी मुख्य है, पतित से पावन बनना कैसे है ये दुनिया में किसको भी पता नहीं है, इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर, गीता के युग में हम पवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित से पावन कैसे बनना है इस दुनिया में ये भी किसी को पता नहीं है, पतित से पावन कैसे बनना होता है। साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कि देह सहित सबको भूलो, ये केवल भगवान ही कह सकता है, देह से देह के सब धर्मों को भूलो, भगवान के सिवा और कोई नहीं कह सकता। कोई भी साधु संत आदि कभी ऐसे नहीं कहेंगे देह सहित सबको भूलो, एक बाप को याद करो तो माया के पाप कर्म सब भस्म हो जाएंगे, ये कोई भी देहधारी नहीं कह सकता, कोई गुरु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते हैं ये ब्रह्मा कैसे बनता है, ब्रह्मा कैसे बनता है, इसने अपने ऊपर थोड़ी ये पाग रखी मैं ब्रह्मा हूं, ऐसे खुद को तो कभी नहीं कहा। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा कैसे बनता है, छोटेपन में तो ये गांवड़े का छोड़ा था, ब्रह्मा बाबा क्या थे लौकिक नहीं छोड़, बचपन में गांव में पैदा हुआ था, वो भी हैदराबाद के किसी छोटे से गांव में, तो गांव का छोरा था। गांव के छोरे कैसे होते हैं, आधे कपड़े पहने हुए आधे नहीं है, ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो ये भी गांवड़े का छोरा था। 84 जन्म लिए हैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, तो नई दुनिया सो फिर पुरानी हो जाती है, अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुला है। खुल गया ना सबकी बुद्धि का ताला, हाँ माताएं हाँ करती हैं, सबकी बुद्धि का ताला खुला है, तुम समझ सकते हो धारण कर सकते हो, अभी तुम बुद्धिवान बन गए हो। हाँ माताएं सब बुद्धिवान बन गई है ना, बिल्कुल हाँ, देखो नशा चढ़ता है माताओं का, बुद्धिवान बन गए हो, अभी तुम बुद्धिवान बने हो, और आगे क्या थे बाबा कहते बुद्धिहीन थे, ये भी मानेंगे ना बुद्धिहीन थे, ये भी मानेंगे, ये भी मानेंगे कि बुद्धिहीन थे। देखो ये लक्ष्मी नारायण कितने बुद्धिवान हैं, देखो तो सही सारे विश्व पर उनका राज्य है लक्ष्मी नारायण का, तो कितने बुद्धिवान होंगे। ये लक्ष्मी नारायण बुद्धिवान हैं और यहाँ कलयुग में सब बुद्धिहीन हैं। सामने देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना, बाबा जब भी मुरली चलाते थे तो लक्ष्मी नारायण का जो ट्रांसलाइट है सदा ऑन रहता था, तो बाबा हर वक्त उसके तरफ ध्यान खिंचवाते थे, तो बाबा कहते देखो ये पैराडाइज के मालिक है ना, स्वर्ग के मालिक है ना, श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर अंतिम जन्म में क्या हुआ, वही आत्मा फिर गांवरे का छोरा बन गई, इसलिए दोनों दिखाते हैं श्री कृष्ण को, कहाँ उसको गांवरे का छोरा भी दिखाते गाय चढ़ाने वाला, और कहाँ तो द्वारकाधीश बना दिया वैकुंठनाथ कह दिया, तो दोनों ही दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, फिर गांवरे का छोरा बना है, तुम बच्चों को ये धारण कर फिर पवित्र भी जरूर बनना है। मुख्य है ही पवित्रता की बात, लिखते भी हैं बाबा को, लिखते हैं पवित्रता की बात है, बाबा को लिखते बाबा माया ने हमको गिरा दिया, आंखें क्रिमिनल बन गई। बाबा कहते कई बार बच्चे लिखते हैं तो बच्चे बाबा कहते उनको लज्जा भी नहीं आती है, लिख तो देते भाई, बाबा कहते सच लिखो तो लिख देते ये बातें, तो बाबा कहते हैं आंखें क्रिमिनल बन गई माया ने हमको गिरा दिया, ये बाबा को लिखते हैं। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो ना, तो आत्मा को देखेंगे तो थोड़ी क्रिमिनल आंख जाएगी, आत्मा समझो ना, बस अब तो घर जाना है ये याद करो, बाप को याद करना है, बाकी थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर फिर हम चले जाएंगे, थोड़ा तो कर्म करना है शरीर निर्वाह अर्थ पेट के लिए तो चाहिए ना, तो थोड़ा तो धन कमाना है, लेकिन फिर घर चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए लड़ाई भी लगती है, ये भी तुम देखना। बाबा कहते देखना कैसे लगती है, और बाबा क्या कहते अचानक लगेगी, अचानक पहले से बता के नहीं आएगी, कैसे लगती है देखना। बुद्धि से समझते हैं हम देवता बनते हैं तो हमको नई दुनिया भी चाहिए, इसलिए विनाश जरूर होगा, हम अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। तो बाप कहते हैं हाँ देखो बाबा कितना निर्माण बन करके क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित होता हूँ। शिव बाबा हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं। तुमने तो डिमांड की ना, तब क्या डिमांड की हमने भगवान से, क्या मांगा? डिमांड की कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। ये भगवान को कहा, डिमांड की कि पतितों को आकर पावन बनाओ, तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ। तुमने डिमांड की तो तुम्हारे कहने से मैं आया हूँ, तुमको रास्ता बताता हूँ। हाँ, तुमको रास्ता बताता हूँ, बहुत सहज है। कैसे तुम पावन बन सकते हो? बस आत्मा समझो और आत्मा को देखो। मन मना भव और मुझे याद करो। भगवानो वाच है ना, सिर्फ कृष्ण श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। कहाँ बाप और कहाँ श्री श्री कृष्ण, लेकिन क्या संबंध है शिव बाबा का श्री कृष्ण के साथ? बाबा कहते हैं श्री कृष्ण बाप के नेक्स्ट है। हाँ, जैसे होता है ना भाई, पहला नंबर ये हेड हो गया, फिर उसके बाद ये, तो चलो तो उसका वो भी कोई कम थोड़ी होगा। हाँ, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, फिर एडिशनल हो गया, पर वो एडिशनल भी कम थोड़ी है, तो वो भी तो हेड का ही काम कर सकता है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण, सबसे ऊंची महिमा शिव बाबा की, फिर उसके नेक्स्ट महिमा बाद में, उसके बाद श्री कृष्ण की महिमा। तो बाप के नेक्स्ट है श्री कृष्ण, ये है परम धाम का मालिक। शिव बाबा परम धाम का मालिक और श्री कृष्ण विश्व का मालिक, दोनों मालिक है, दोनों ये कम नहीं है। तो ये परम धाम का मालिक और ये विश्व का मालिक। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ होता ही नहीं है, वहां के लिए नहीं कहेंगे मालिक है, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो टेम्पररी है ना, संगम युग के लिए ही है। बाकी सूक्ष्म वतन के लिए ये होता नहीं। सभी से नंबर वन है श्री कृष्ण, जिसको सब प्यार करते हैं। अब शिव बाबा निराकार है ना, तो कैसे प्यार करे? इसीलिए श्री कृष्ण जो नंबर नेक्स्ट है और वो साकार है, तो उसको कितना प्यार करते हैं, जिसको बहुत प्यार करते हैं। बाकी तो पीछे पीछे आए, वो तो सब ना थोड़ा अलग अलग हो गए। शिव बाबा और श्री कृष्ण ये है नंबर वन और वो नंबर टू, बाकी तो पीछे पीछे आए हैं। स्वर्ग में तो सभी जा न सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए। हड्डी, हड्डी खुशी किसको कहते हैं? अंदर की जिगरी, हाँ, हड्डी खुशी। बाकी बाहर की खुशी तो बहुत होती है। हाँ, कोई आपकी इच्छा पूरी हुई, आइसक्रीम मिल गई। हाँ, कई तो देखते दो दो तीन तीन ग्लास, अरे आज आइसक्रीम मिली, आइसक्रीम मिली है, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। हाँ, तो वो तो उस समय की खुशी होती है। और कईयों की तो ठंडा, ठंडी में ठंडी वो आइसक्रीम खाते तो गला ही बैठ जाता है, उस समय तो बड़ा मजा आता है। तो बाबा कहते हैं बाकी स्वर्ग में तो सभी जा न सके, तो मीठे मीठे बच्चों को हड्डी खुशी रहनी चाहिए, जिगरी खुशी, हड्डियों में जाने वाली खुशी। कौन सी खुशी? बाबा की जो बातें हैं वो सुन करके, धारण करके और उसी अनुसार अनुभव करते, तो वो हड्डी खुशी। आर्टिफिशियल खुशी तो चल न सके, वो तो टेम्पररी खुशी है, कुछ इंद्रियों का सुख मिल गया। आर्टिफिशियल खुशी तो चल नहीं सकती। बाहर से किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, अब ये शुरू की बात है, आते थे बाबा के सामने, कब पवित्र नहीं रहते। अब यहाँ तो जो यज्ञ में थे वो तो सब, उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर ली थी हम पवित्र और योगी रहेंगे। अब वो फिर नए नए भी आते थे, कोर्स कराते कराती थी ना बहने, यज्ञ में भी कोर्स कराती थी। तो किस्म किस्म के बच्चे बाबा के पास आते थे, पर कभी पवित्र नहीं रहते थे। बाबा समझाते थे, विकार में जाते हो तो फिर आते ही क्यों? विकार में जाते हो तो आते ही क्यों? तो कहते थे क्या करे, रह नहीं सकते, रोज आता हूँ, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए, कब कोई ऐसा तीर लग जाए जो मैं भी ये पवित्र रह सकूं। अब हाँ, अभी भी कहीं कहते हैं ना, आते हैं ना सेंटर पर, आते हैं मुरली भी सुनते हैं, क्लास करते हैं, योग में भी बैठते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र नहीं है। फिर उनको कहते हैं कि आप आते हो लेकिन पवित्रता तो नहीं है, तो कहते सुधरेंगे कैसे? आएंगे तब तो शक्ति मिलेगी जो पवित्र रहेंगे। तो बाबा कहते हैं क्या करें, रह नहीं सकते, रोज आता हूं, न जाने कब कोई ऐसा तीर लग जाए, आप बिगर सदगति कौन करेंगे। फिर ये भी कहते हैं बाबा को, बाबा आपके बिना सदगति कौन करेगा हमारी। आकर बैठ जाते थे, माया बड़ी प्रबल है, निश्चय भी होता है, बाबा हमको पतित से पावन गुलगुल बनाते हैं, परंतु क्या करें, फिर भी सच तो बोलता था। बाबा कहते हैं वो बच्चा सच तो बोलता था कि बाबा हम रह नहीं सकते, पर आता हूं ताकि एक दिन हो भी जाए, मैं हो जाऊं पवित्र। फिर भी सच तो बोलता था। अब जरूर वो सुधर गया होगा। हाँ, बाबा ने कहा वो सुधर गया होगा। उनको ये निश्चय था कि इन द्वारा ही हम सुधरेंगे, यही हमको सुधार सकते हैं। इसीलिए आता भी रहता था परंतु गलत कर्म भी करता था। इन द्वारा ही हम सुधरेंगे। तो फिर भी देखो बाबा ने उसके प्रतिज्ञा का भी सुधर गया होगा। इस समय कितने एक्टर्स हैं, एक का फीचर न मिले दूसरे से, फिर कल्प बाद उसी फीचर से पाठ रिपीट करेंगे। है ना आश्चर्य की बात, यही जो आपको शरीर मिला है 5000 साल पहले यही शरीर मिला था, याद है? यही शरीर मिला था 5000 साल पहले, फिर यही शरीर मिलेगा 5000 साल के बाद, यही हूबहू वही। तो बाबा कहते हैं फिर कल्प बाद उसी फीचर से फिर पाठ भी रिपीट करेंगे। आत्माएं तो सब फिक्स्ड है ना, सभी एक्टर्स बिल्कुल एक्यूरेट पाठ बजाते रहते हैं, कुछ भी फर्क हो नहीं सकता। सभी आत्माएं अविनाशी है, उनमें पाठ भी अविनाशी नूंधा हुआ है। कितनी समझाने की बातें हैं, कितना समझाते हैं बाबा, फिर भी बाबा कहते बच्चे भूल जाते हैं। बताओ, इतना बाबा समझाते फिर भी बच्चे भूल जाते हैं, समझा नहीं सकते। कैसे पता चलता है कि भूल जाते हैं? क्योंकि अगर भूल जाते नहीं होते तो दूसरों को समझा सकते होते, पर दूसरों को नहीं समझा सकते माने खुद भी भूल गए, ऐसे ही है ना? तो समझा नहीं सकते। अब ये भी ड्रामा में होना है कि समझ तो रहे हैं लेकिन समझा नहीं सकते हैं, तो ड्रामा। हर कल्प राजाई तो स्थापन होती ही है, सतयुग में आते तो थोड़े ही है ना, सो भी नंबर वार, यहां भी नंबर वार है ना। एक का पाठ एक ही जाने, दूसरा कोई जान नहीं सकता। हर एक अपना अपना पाठ जानता है, दूसरा उसके पाठ को नहीं जानता है। हर एक की गत मत न्यारी है। बाबा ने कहा ना, जैसे ईश्वर की गत मत के लिए कहते न्यारी है, तो हर मनुष्य की गत मत भी न्यारी है, तो दूसरा उसका पाठ जान न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हाँ सारा मुरली का सार आ गया दो वाक्यों में। पहला, सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। कई आते हैं ना, यहाँ मैं तो देखती हूँ बाबा की झोपड़ी के पास बैठे रहते हैं, बाहर बैठे रहते हैं, नीचे बैठ करके लिखते रहते हैं कुछ न कुछ लिखते हैं। कई तो मांगने भी आते हैं हमको कागज पेन दो, और लिखते रहते हैं। फिर बाबा की झोपड़ी में वहाँ लिखा है हम लेटर टू बाबा, बाबा को पत्र, तो उसमें डाल देते हैं। कईयों को हमने देखा, कई VIPs भी ऐसे करते हैं। वहाँ सिक्किम का चीफ मिनिस्टर आया था यहाँ सिक्किम चीफ में, तो वो तो उसको ये मालूम था, उसकी वाइफ तो ज्ञान में चलती है, तो उसका पति को वो कहती थी तुम भी बाबा को लिखो। तो यहाँ आई थी तो पति को कहा चीफ मिनिस्टर सिक्किम का कि बाबा को पत्र लिखो, तो बाकायदे उसको वो दिया गया लिफा ये लेटर और कागज, और उसने बाबा को पत्र लिखा भी, क्या लिखा वो जाने, और बाबा की लेटर बॉक्स में डाला। तो देखो बाबा भी कहते थे कोई भी अगर भूल है कुछ भी है बाबा को लिख करके बाबा के लेटर बॉक्स में लिखो। किसी ने हमसे पूछा कौन पढ़ता है, हम कहते कोई नहीं पढ़ता, जरूरत ही क्या है किसी को पढ़ने की, वो बाबा जाने आप जानो, बस आप अपना काम पूरा करो, भले चलो नाम न लिखो लेकिन लिख करके बाबा को दे दो, और फिर बाबा से संकल्प करो बाबा दोबारा नहीं करेंगे, तो बात खत्म हो गई, तो बाबा जाने आप जानो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सच्चे बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। हाँ, ये पहली पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, बाप ज्ञान को धारण कर बुद्धिवान बनना है, अंदर से हड्डी यानी जिगरी खुशी में रहना है, कोई भी श्रीमत के विरुद्ध काम करके खुशी गुम नहीं करनी है। वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वो कैसे रहेंगे, वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा की पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा, अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है, इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, समय को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं, समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं, वो समय पर धोखा नहीं खाते हैं। नहीं तो अगर समय को व्यर्थ गंवाते रहते हैं तो फिर समय से धोखा खा लेते हैं, वो समय आया और वो तैयारी नहीं, वो समय पर धोखा नहीं खाते हैं। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो, उसके लिए ज्ञान खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जो भी दुख और अशांति के कारण है, विकार है, उनसे मुक्त होना है। अगर कोई विकार आते भी हैं तो विजयी बन जाना है, हार नहीं खानी है। अनेक व्यर्थ संकल्प और विकल्प विकर्मों से मुक्त बनना, यही जीवन मुक्त अवस्था है। जीवन मुक्त संगम युग का यही है, व्यर्थ संकल्प विकल्प विकर्म सबसे मुक्त होना, यही जीवन मुक्त अवस्था है संगम युग की। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।